ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 11वां अध्याय। युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह। श्लोक संख्या 22। केचित् कर्म वदन्ति एनं स्वभावं अपरे नृप एके कालं परे दैवं पुंसः कामं उत अपरे। केचित् कर्म वदन्त्येनं स्वभावं अपरे नृप एके कालं परे दैवं पुंसः कामं उतापरे। कोई कर्म सकाम कर्म वदन्ति कहते हैं एनम वह स्वभावं स्वभाव अपरे अन्य नृप हे राजा ध्रुव एके कुछ कालम समय काल परे अन्य दैवम भाग्य पुंसह जीवात्मा की कामम इच्छा उत भी अपरे अन्य। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं, कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छा के कारण बताते हैं। तात्पर्य: दार्शनिक कई प्रकार के हैं, मीमांसक, नास्तिक, ज्योतिषी, कामुकातवादी तथा चिंतक। वास्तविक निष्कर्ष ये है कि हमारे कर्म ही हमें इस जगत में विभिन्न योनियों में बांध देते हैं। ये योनियां किस प्रकार बनी इसकी विवेचना वेदों में प्राप्य है। यह जीवात्मा की इच्छा के कारण है। जीवात्मा कोई जड़ पत्थर तो है नहीं, उसकी तरह तरह की इच्छाएं अथवा काम होते हैं। वेदों का कथन है कामोकर्षित जीवात्माएं मूलतः भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारियां होती हैं किंतु वे प्रकृति पर विजय की कामना द्वारा आकर्षित होकर इस भौतिक जगत में नीचे गिर आई हैं, यह तथ्य है। प्रत्येक जीवात्मा यथाशक्ति भौतिक स्रोतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस काम अथवा इच्छा को विनष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ चिंतकों का कथन है कि यदि कोई अपनी इच्छाएं त्याग दे तो पुनः मुक्त हो सकता है, किंतु इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि इच्छा तो जीवात्मा का लक्षण है। यदि इच्छा न हो तो जीवात्मा पत्थर के समान जड़ रहे। अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छा को श्री भगवान की सेवा की ओर मोड़ दे, तब इच्छा शुद्ध हो जाती है। जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत योनियों तथा उनके सुख दुख की व्याख्या करने वाले सभी सिद्धांत अपूर्ण हैं। वास्तविक व्याख्या तो यह है कि हम सभी भगवान के नित्य दास हैं, और ज्यों ही हम इस संबंध को भूल जाते हैं तो हम इस जगत में फेंक दिए जाते हैं, जहां विभिन्न कर्मों के द्वारा सुख या दुख भोगते हैं। हम इसमें इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु इस इच्छा को शुद्ध करके भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, तब इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा अवस्थाओं में हमारा घूमना बंद हो जाएगा। अनुवाद को दोहराइए। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं, कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छा के कारण बताते हैं। ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वयंभुव मनु ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं कि उन्हें युद्ध बंद करना चाहिए, और इसलिए उनको दर्शन सुना रहे हैं। पिछले कई श्लोकों में हमने देखा कि स्वयंभू मनु कह रहे थे कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण वो इस भौतिक सृष्टि के परे होते हैं, और उनको संसार के बद्ध जीवों के कर्मों से या तो उनके कर्मों के फलों से कोई संबंध नहीं है। वो उदासीन हैं, निरासक्त हैं, वो केवल कर्मों का फल अपने भौतिक शक्ति के द्वारा बद्ध जीवों को प्रदान करते हैं। इसके अलावा भगवान को जीवों के कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान अपने नित्य दिव्य स्तर में स्थित होते हैं, लेकिन बद्ध जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों की प्राप्ति होती है। कभी मच्छर की योनि, कभी देवता की योनि, इस तरह से भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त करके जीव इस संसार में भ्रमण करते रहता है भगवान की विस्मृति में। लेकिन भगवान अपने स्थान में सदैव रहते हैं, इसलिए उनका नाम है अच्युत, जिनका पतन कभी नहीं होता, जिनका च्युत, जो च्युत कभी नहीं होते, उनको अच्युत कहते हैं। तो इस तरह से ये बद्ध जीव जो संसार में है, उसे कर्मों के फल से उसका किस्मत बनता है बद्ध जीव का, और इस किस्मत या प्रारब्ध, इसके वजह से उसे नाना परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कभी सुख कभी दुख, कभी संकट कभी आराम, इस तरह से विपरीत परिस्थितियों का सामना, इन द्वंद्वों का सामना संसार में करना पड़ता है। यहां स्वयंभू मनु समझा रहे हैं कि जो अलग अलग योनियों में, जो प्राणी में विभिन्नता दिखाई पड़ती है, और जो सुख दुख के अंतर जो पाए जाते हैं, वो अलग अलग कारणों की वजह से है। कोई लोग कहते हैं कि ये कर्म के वजह से है, कोई कहते हैं कि ये प्रकृति की वजह से है, कोई कहते हैं ये काल का प्रभाव है, और कोई कहता है किस्मत, और कोई कहते हैं ये इच्छा। इस तरह से स्वयंभू मनु ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं कि ये संसार में विविधता और सुख दुख का भेदभाव किस लिए होता है। वास्तव में ये सारे कारण जो स्वयंभू मनु बताते हैं, ये सारे कारण क्या है, सही है कि गलत है? हाँ, सही है कि गलत है? क्या बता रहे हैं स्वयंभू मनु यहां पर? स्वयंभू मनु किस बात की चर्चा कर रहे हैं? जो सुख और दुख का भेदभाव हम देखते हैं, हमें भी सुख दुख भुगतना पड़ता, आज सुखी हैं तो कल दुखी तो परसों फिर से सुखी, ये हमारे जीवन में ही भेदभाव दिखाई पड़ता है, और अलग अलग योनियों में भी दिखाई पड़ता है, कोई आदमी ज्यादा सुखी है, कोई आदमी ज्यादा दुखी है। और किस बात का भेदभाव? योनियों का भेदभाव, कोई मच्छर की योनि में, कोई शेर की योनि में, ये भेदभाव की बात कर रहे हैं। जो विविधता ये भौतिक संसार में दिखाई पड़ती है, उसके क्या कारण है, क्या बता रहे हैं स्वयंभू मनु? पहले बता रहे हैं क्या कारण क्या है, कर्म। अलग अलग प्राणियों के अलग अलग कर्म होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग विविध योनियां, सुख दुख की परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं। दूसरा कारण काल का प्रभाव, तीसरा प्रकृति, चौथा इच्छा, पांचवा भाग्य या किस्मत। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन से गलत है? हाँ, गलत कौन से हैं इसमें से? इच्छा गलत है। हाँ, गलत कौन सा है इसमें? गलत इन पांच कारणों में से कौन सा है? इच्छा, इच्छा गलत है, इच्छा ही सही है, बाकी सब गलत है, कुछ भी गलत नहीं है, सभी बराबर है। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि आप सब बराबर है, केवल दोस्त जवाब सही है कि ये सारे जवाब सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। अगर आपने भोजन लिया हो और हम कहें कि ये संतुष्ट हैं, खाना खाने का पेट भर गया इनका, और हम दूसरी बात कहें इन्होंने भोजन ले लिया है, तो दोनों एक ही बात है ना, कि अलग है? भोजन खाने से पेट भरता है ना। तो उसी तरह से ये सारे जो कारण बताए जाते हैं, ये सब सही है, क्योंकि हर एक को देखते हैं, यहां बताते हैं कर्मों की वजह से। क्या जीव कर्म करता है उसके फल भुगतना पड़ता है ना, सही बात है, जैसे करनी वैसे भरनी। तो उसने, किसी ने पाप किया उसको वो कड़वा फल मिलेगा, किसी ने पुण्य किया है मीठा फल मिलेगा, जैसे कर्म करते हैं वैसे फल मिलता है। तो कर्म का जो जवाब है ये सही है। दूसरी बात, प्रकृति, प्रकृति क्यों सही है? गर्मी ठंडी होती है प्रकृति के द्वारा होती है, प्रकृति प्रदान करती है, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी सुख कभी दुख। और प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। भगवान बताते हैं जीव सोचता है कि मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, लेकिन वास्तव में करता कौन है? प्रकृति, प्रकृति को चलाने वाले भगवान है, लेकिन करने वाले कौन है? प्रकृति। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, सारे कर्म प्रकृति करा रही है जीव से। तो प्रकृति भी कष्ट देती है, प्रकृति के प्रकृति के परिवर्तन से ही ये सारे सुख दुख आते हैं, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी भूकंप कभी क्या इस तरह से। तो प्रकृति का सवाल भी, जवाब भी सही है। और बाकी है काल, ये कैसे सही है? काल की वजह से कोई बूढ़ा होता है, कोई जन्म लेता है, कोई मर जाता है, कोई उठता है, कोई बैठता है, कोई बीमारी, कोई कोई परिवर्तन काल के लिए होता है। संसार का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन किसके ऊपर आधारित है? काल के ऊपर। अगर काल का चक्र न होता तो क्या परिवर्तन होता ये संसार में? नहीं होता। तो काल भी मूल कारण है, ये भी सही है। और आखिर में, आखिर में नहीं, और किस्मत, भाग्य, सही है कि गलत? क्यों? बस कर्म और भाग्य इनमें क्या अंतर है? जो हम, हमने कर्म किए हैं, जो उनका फल हमें मिलता है, उसको हम भाग्य कहते हैं, है ना? तो भाग्य और कर्म, कर्म भाग्य मतलब प्रारब्ध हमारे, बस इतना ही है। और आखिर में इच्छा, सही है कि गलत है? कैसे सही है? हाँ, लेकिन हमारे ये संसार के विविधता का कारण इच्छा कैसे होता है? इच्छा के कारण हम यहां आए, और इच्छा के कारण यहां पे कर्म कर रहे हैं, और इसलिए अटक भी गए हैं इस चक्कर में, और इच्छा से ही हम दुख भुगत रहे हैं, लेकिन इच्छा से ही वापस भी जा सकते हैं। सब कुछ इच्छा पे आधारित है। तो ये सारे सही हैं, लेकिन इन सब में से मूल कारण कौन सा है? इच्छा, सही बात है। मूल कारण है इच्छा। इच्छा की वजह से हम आए, इच्छा की वजह से हम बंधे हुए हैं, और इच्छा की वजह से यहां से हम लौटकर भगवान के धाम में जा सकते हैं। इच्छा से हम भगवान की सेवा करते हैं, इच्छा से हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। इच्छा ही मूल कारण है, सारी सृष्टि इच्छा के ऊपर आधारित है। भगवान स्वराट हैं, जन्माद्यस्येत अन्वयाद इतरतश्च अभिज्ञः स्वराट। भगवान की परिभाषा दी गई है श्रीमद् भागवत के कौन से श्लोक में? ये कौन सा श्लोक है श्रीमद् भागवत का? पहला श्लोक। इसमें क्या बताया जाता है? भगवान अभिज्ञ, सब कुछ जानते हैं, और स्वराट, स्वराट मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र हैं भगवान, कोई बंधन नहीं होते हैं भगवान के ऊपर। अगर कोई बंधन होते तो वो स्वराट या भगवान नहीं बनते। तो हम भगवान के अंश हैं, इसलिए उस स्वतंत्रता की भावना हमारे अंदर भी कण मात्र है। लेकिन क्या होता है, जब ये स्वतंत्रता की भावना होती है, हम क्लास में सो भी सकते हैं, जगे हुए भी रह सकते हैं। तो जो सोए हुए हैं कृपा करके उठ जाएं। तो स्वतंत्रता से हम सोचते हैं कि हम भी भगवान की तरह बन सकते हैं, है ना। तो भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, इसलिए वो स्वतंत्रता से कुछ भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम अणु हैं, इसलिए स्वतंत्र इच्छा रखने से भी इच्छा की पूर्ति के लिए हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसलिए एक स्वतंत्रता में भगवान की नकल नहीं करनी चाहिए हमें। हम यहां संसार में क्यों आए हैं? क्योंकि हमने भगवान का नकल करना चाहा। हम भी भगवान की तरह भोगी बनना चाहते हैं। अहम भोगी, अहम ईश्वर, ईश्वर अहम, अहम भोगी। 16वें अध्याय में ये असुरी प्रवृत्ति का वर्णन आता है कि क्यों जीव इस संसार में अटक के पड़ा है। इसीलिए ये इच्छा ही सब चीजों का मूल कारण है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, ऊर्ध मूलम अधर शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। वो कहते हैं कि ये संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है, लेकिन इस अश्वत्थ वृक्ष की विचित्र बात क्या है, कोई बता सकते हैं? उसकी शाखाएं ऊपर है, जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। तो ऐसे कभी वृक्ष देखा है आपने, इसकी एक शाखाएं नीचे और वृक्ष ऊपर? देखा है, पानी में दिखाई पड़ता है। जब आप किसी नदी के या तालाब के तट पर जाते हैं और वहां पर वृक्ष का प्रतिबिंब जल में देखते हैं, तो वो प्रतिबिंब उल्टा नजर आता है, शाखा नीचे होती है और जड़ ऊपर होते हैं। सही बात है। तो ये संसार इसका प्रतिबिंब है, भौतिक संसार, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। ये जिस तरह से एक वृक्ष का प्रतिबिंब हमें पानी में नजर आता है जो उल्टा है, उसी प्रकार से आत्मा जो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब ये भौतिक संसार है। तो अगर इस उपमा को, इस दृष्टांत को हम सही तरह से समझें तो हम समझ सकते हैं कि वृक्ष क्या है। वृक्ष की तुलना किससे की गई है? आध्यात्मिक जगत से, ठीक है। आध्यात्मिक जगत की तुलना वृक्ष से की गई है। और प्रतिबिंब क्या है? भौतिक संसार। तो ये प्रतिबिंब किसमें आता है, किसमें दिखाई पड़ता है ये प्रतिबिंब? पानी में। तो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब भौतिक संसार है, लेकिन किसके ऊपर ही दिखाई पड़ता है? जल। जल का यहां की तुलना किससे की गई है? इच्छा से। सही बात है। इस तुलना को समझ गए आप, उपमा को समझ गए? बताइए तो कौन बताएंगे? आध्यात्मिक जगत क्या है? वृक्ष है। भौतिक संसार क्या है? प्रतिबिंब है। तो जब आप वृक्ष को देखते हो जिसका प्रतिबिंब आता है, तो किस वस्तु में आप प्रतिबिंब को देख पाते हो? पानी में। तो जो सरफेस, सरफेस को क्या कहते हैं, जिस माध्यम पे आप उस प्रतिबिंब को देखते हो वो क्या है? पानी है ना, पानी है। इसलिए वृक्ष को आप, वृक्ष का प्रतिबिंब देख सकते हो। अगर जमीन होती तो जमीन में प्रतिबिंब देख सकते हैं? नहीं। पानी है इसलिए पानी के भीतर आप प्रतिबिंब देखते हो। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत है जिसका प्रतिबिंब भौतिक संसार है, लेकिन माध्यम क्या है जिसके ऊपर आप इस प्रतिबिंब को देख रहे हैं? इच्छा। इसलिए सभी कुछ इच्छा के ऊपर आधारित है। लेकिन ये कैसी इच्छा है? विकृत इच्छा। इसलिए केवल प्रतिबिंब नहीं, विकृत प्रतिबिंब है। क्योंकि जैसे हमारी इच्छा में विकार आ जाते हैं, तो फिर वो विकार एक माध्यम बन जाता है, वो विकृत इच्छा एक माध्यम बन जाती है, जिससे भौतिक संसार उसका, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब बन जाता है। समझ गए इस बात को आप सब? स्पष्ट है? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। 15वें अध्याय में पहले 2-3 श्लोकों में प्रभुपाद इस उनकी टीका में इस बात को अच्छी तरह से समझाते हैं। तो आज आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है? 15वां अध्याय के पहले 3 श्लोक कम से कम पढ़ के उनको तात्पर्य भी पढ़िए। पढ़ेंगे कितने लोग? पढ़ेंगे सब लोग? पढ़ेंगे? भगवत गीता है ना सबके पास? जैसी है तैसी है कि पढ़ा है? तो इस तरह से इच्छा के ऊपर सब आधारित है। अच्छा अभी ये बताइए, इच्छा भले ये इच्छा का प्रतिबिंब भी हो, शुद्ध इच्छा क्या है? शुद्ध इच्छा है भगवत प्रेम। जब भगवान की सेवा के लिए जीव इच्छुक रहता है, इसको भगवत प्रेम कहते हैं। अपना जीव का स्वाभाविक जो चरित्र स्वभाव होता है वो है भगवत प्रेम। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यह है जीव का स्वरूप, यह है शुद्ध इच्छा। लेकिन इस शुद्ध इच्छा में जब कोई विकार आ जाता है, अर्थात भगवान की सेवा के अलावा कोई और इच्छा आ जाती है कि हम भोग करें, भगवान ही क्यों अकेले भोग करें, हमें सब भगवान को ही क्यों सेवा, भगवान की सेवा ही क्यों करनी चाहिए, किसी को हमारी भी सेवा करनी चाहिए, तो यह भावना जब आ जाती है तो शुद्ध इच्छा में विकार आ जाता है। तो जीवों के विकृत इच्छाओं को एक पूर्ति के प्रयत्न करने के लिए एक स्थान दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है, और वो क्षेत्र है भौतिक संसार। भौतिक संसार क्यों बनाया गया है? अभी अभी बताया ना, किस इच्छा के पूरी करने के लिए? शुद्ध इच्छा की। विकृत इच्छा को पूरी करने के लिए एक क्षेत्र बनाया गया है ना? जैसे जब कोई शराबी होता है, अभी थोड़े व्यापारी होते हैं वो जानते हैं कि शराबी की इच्छा क्या होती है, शराब पीने के लिए, तो क्या करते हैं? शराब का अड्डा बनाते हैं। तो इसीलिए विकृत इच्छा की पूर्ति करने के प्रयास करने के लिए, विकृत इच्छा की पूरी तरह से पूर्ति तो हो ही नहीं सकती, लेकिन पूर्ति के प्रयत्न के लिए उनको एक क्षेत्र दिया गया है, और वो क्षेत्र है भौतिक संसार, भौतिक जगत, जिसमें जीव आके अपने हवा महल बना सके, अपने इधर आके पाप कर सके, अपने विकृत इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास कर सके। लेकिन फिर भी जैसे सत्ययुग में देखा जाता था, फिर भी इच्छा में इतना विकार नहीं था, सत्व गुण सब जगह फैला हुआ था, इसलिए विकार कम था। जैसे कि जब नदी में या तालाब में कोई लहरें नहीं होती हैं, पानी शांत होता है बिल्कुल, उस समय पानी स्वच्छ रहता है, आप नीचे पानी को देख सकते हो, पानी में जो जमीन है नीचे वो देख सकते हो, मिट्टी नीचे देख पाओगे आप, क्योंकि पानी बिल्कुल स्वच्छ साफ रहता है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पानी में विकार नहीं है, पानी एकदम शांत है। लेकिन आप छोटा पत्थर फेंके पानी में तो क्या होगा? धीरे धीरे चक्र बाहर चलती जाएंगी, और उस समय वृक्ष का प्रतिबिंब उसमें क्या दिखेगा आपको? हिलता हुआ दिखेगा, उसमें विकार आ जाएगा, ज्यादा विकार आ जाएगा। पहले तो यह प्रतिबिंब है, लेकिन जब पानी शांत था तो प्रतिबिंब भी स्पष्ट तरह से आपको दिखाई पड़ता था, ठीक है? लेकिन छोटा पत्थर डाल दिया आपने, तो जैसे जैसे वो चक्र बाहर आते गए, जहां उस पत्थर का स्पर्श हुआ जल से, उसको केंद्र बिंदु बनाकर चक्र बाहर की ओर आते हैं ना, तो जैसे जैसे चक्र जब बाहर आते हैं तो उस प्रतिबिंब में थोड़ा बहुत विकार आ जाता है, प्रतिबिंब हिलने लगता है, ठीक से आप देख नहीं पाते प्रतिबिंब को स्पष्ट तरीके से। उससे थोड़ा बड़ा पत्थर फेंकिए, क्या होगा? विकार बढ़ जाएगा। और बड़ा सा पत्थर फेंकिए, क्या हो जाएगा? और भी बढ़ेगा। और किसी भक्त को कहिए कि पानी में कूद जाइए, और वो कूद गया पानी में, पानी वो फिर क्या होगा प्रतिबिंब का? और बाढ़ आ जाएगा, तो प्रतिबिंब का और भी विकार आ जाएगा। तो जब पानी शांत रहता है वो सत्व गुण के बराबर है, जब इसमें थोड़ा विकार आ जाता है तो उसको रजोगुण कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा विकार आ जाता है तो उसको तमोगुण कहते हैं। तो कौन से परिस्थिति में प्रतिबिंब को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं? सत्वगुण में। अर्थात अर्थात क्या? इसकी तुलना दृष्टांत के क्या है? जब पान उल्टा है, हम उल्टी बात कहना चाहते हैं। जब सत्वगुण का अनुशीलन करते हैं तो क्या होता है? जब सब जगह सत्वगुण होता है तो धीरे धीरे से आध्यात्मिक सत्य को आप और स्पष्टता से जान सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा कष्ट दीजिए दिमाग को। जब पानी शांत रहता है तब आप सच्चे वृक्ष को प्रतिबिंब देख सकते हैं ना। भले आप सही वृक्ष को, पूरी वृक्ष को नहीं देख रहे हो साक्षात, लेकिन प्रतिबिंब को तो स्पष्ट तरीके से देख सकते हो। आपको पता तो चलता है ना कि है कोई वृक्ष, और वृक्ष के सही मायने से आपको पता चलता है वृक्ष के कितने अच्छे अच्छे फल हैं, पत्ते कितने खूबसूरत हैं, फूल हैं, सब अच्छी तरह से दिखाई पड़ते हैं। तो एक वृक्ष है और उस वृक्ष के बारे में थोड़ा बहुत प्रतिबिंब को देख कर भी जानकारी हो सकती है। लेकिन जितने ज्यादा विकार पाने में आते हैं, प्रतिबिंब को भी नहीं देख पा रहे हैं ठीक से आप, तो इसलिए सही वृक्ष क्या है आप जान नहीं पाओगे। तो सत्वगुण मतलब पानी शांत है। तो सत्वगुण का अनुशीलन जब करते हैं तो ये एक अनुकूल वातावरण है जिसमें आप आध्यात्मिक जीवन की अनुशीलन कर सकते हैं, जिसमें आपको कम से कम ये तो पता चल सकता है कि आध्यात्मिक जीवन कुछ है, कुछ भगवान का धाम है, भगवान है। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। लेकिन जब रजोगुण का विकार थोड़ा बढ़ जाता है, उसमें मिश्रण हो जाता है सत्वगुण में, तो क्या होता है कि वो प्रतिबिंब ठीक से नहीं देख पाते, भौतिक संसार को हम ठीक से नहीं देख पाते। सत्वगुण में तो कम से कम आप समझते हैं कि ये संसार भगवान का है, हमें शांतता से इसका भोग नहीं करना चाहिए, अपने लिए जो आवश्यक है उसको लेके संतुष्ट रहना चाहिए सत्वगुण में। रजोगुण का विकार ज्यादा आ जाता है तो इस भौतिक सृष्टि को किस लिए बनाया गया है, भगवान ने किस लिए इसको बनाया है, वो भी हम ठीक से समझ नहीं पाते, अपने भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भौतिक संसार को भी ठीक से नहीं समझ सकते, और जब भौतिक संसार को ठीक से नहीं समझ सकते तो आध्यात्मिक जगत को भी ठीक से नहीं समझ सकते। जिस तरह से अगर आप प्रतिबिंब को ठीक तरह से नहीं देख पाएंगे तो वृक्ष क्या चीज है कैसे समझ पाएंगे? वृक्ष की ओर तो देख ही नहीं पा रहे हैं, केवल प्रतिबिंब को देख रहे हैं, पानी में देख रहे हैं। लेकिन पानी में ज्यादा अगर लहरें आई, विकार आ गए, तो प्रतिबिंब को नहीं देख पाएंगे तो सही वृक्ष क्या है कैसे समझ पाएंगे? जितना शांत पानी है उतना स्पष्टता से आप प्रतिबिंब को देख पाएंगे और उतनी अच्छी तरह से आप वृक्ष को समझ पाएंगे। ठीक है, तो जितना सत्वगुण का वातावरण अच्छा रहेगा आप भौतिक संसार को भी सही तरह से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और इसके बाद में आध्यात्मिक जगत को भी समझ पाएंगे, भगवान को भी समझ पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रजोगुण का मिश्रण आता है और बढ़ जाता है तो क्या होता है, संसार को भी सही तरह से नहीं समझ पाते हैं। क्यों? सत्वगुण में व्यक्ति समझता है कि ये मेरा नहीं है, जितना चाहिए उतना ही कम से कम लेकर इसका इस्तेमाल करके मैं जीवन व्यापन कर सकता हूं। लेकिन रजोगुण में क्या सोचता है आदमी, ये मेरे भोग के लिए है। तो भौतिक संसार को भी नहीं समझता कि ये मेरा नहीं है, मेरे भोग के लिए नहीं है। जैसे कि पानी में उसको डालने से, पत्थर डालने से प्रतिबिंब भी ठीक से नहीं देख पाता, उसी तरह से रजोगुण में वो भौतिक संसार को भी ठीक से नहीं देख पाता, उसे पता नहीं चलता है कि मेरे भोग के लिए नहीं है, भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी नहीं समझता। और जैसे और भी तमगुण का मिश्रण आ जाता है तो और भी खराब परिस्थिति हो जाती है, और अंधकार में डूब जाता है वो। और आध्यात्मिक जगत की बात तो दूर है, भौतिक संसार को भी ठीक से समझ नहीं पाता है। इस तरह से ये सारे सृष्टि को समझने के लिए भी कि ये सृष्टि क्या है, इसको सत्वगुण चाहिए। देखिए हम देखते हैं संसार में आज प्रकृति का निसर्ग कितना सत्यानाश कर रहे हैं, है ना। लोग जमीन में खोदकर वो तेल निकालते हैं, डायनामाइट बॉम्ब लगाकर माइनिंग करते हैं, वो धातु वगैरह निकालने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद डालते हैं, केमिकल रसायन जिसमें कि कितना विष भर जाता है जमीन में, क्या नहीं करते हैं, पूरा बर्बाद कर रहे हैं हमारे पृथ्वी माता को के शरीर को हम कितना नष्ट कर रहे हैं, ये उग्र कर्म कहलाता है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धयः प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। 16 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं एताम दृष्टिम अवष्टभ्य कि ऐसे दृष्टि से, कैसे दृष्टि से, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत अनिश्वर, जगत आहुर अनिश्वरम। ऐसे लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, ये जगत में कोई ईश्वर नहीं है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते, इसमें कोई सत्य नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है, केवल काम हेतुकम, केवल काम हेतु ये संसार बना है, बस हमारे भोग के लिए बना है और इसका कोई कारण नहीं है। ये असुरी प्रवृत्ति जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में करते हैं गीता के, और इसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं एताम दृष्टिम, जो ऐसी भावना रखते हैं नास्तिकवाद और भोगवाद की भावना जो रखते हैं, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, जिन्होंने ऐसे ज्ञान को, ऐसे विचार धारणा को स्वीकार की है, वो क्या करते हैं, नष्टात्मानो अल्प बुद्धयः, अल्प बुद्धि वाले हैं ये, और अपने आप को भी नष्ट करते हैं, नष्ट आत्मनः, और क्या करते हैं, प्रभवंती उग्र कर्माणः, उग्र कर्म अर्थात बहुत ही नाश करने वाला, वैसे बहुत ही क्रूर कार्य करते हैं जिससे सब नुकसान होता है। क्षयाय जगतो अहिताः, जगत का अहित होता है, ऐसा कार्य करते हैं, इसको उग्र कर्म कहते हैं। उग्र कर्म क्या है, जैसे बड़े बड़े स्टील फैक्ट्री बनाना, स्टील फैक्ट्री में कभी गए हैं आप में से कितने लोग बड़े स्टील फैक्ट्री में गए हैं, टाटा कंपनी में जमशेदपुर में थे, गए स्टील फैक्ट्री के अंदर, क्या देखा अंदर स्टील फैक्ट्री में, क्या क्या याद आया आपको, हाँ, और वहां वातावरण कैसे रम्य है, मधुर है, कैसा होता है, आपको स्वर्गलोक की याद आई कि हिमालय की याद आई, नरक। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया फैक्ट्री इज अनदर नेम फॉर हेल, ये फैक्ट्री है ना, ये नरक का दूसरा नाम है, इसको उग्र कर्म बोलते हैं। भीषण काम से बेचारे कर्मचारी वहां उस पिघला हुआ लोहा, समझिए कि क्या तापमान वहां होगा, और उनको न जाने क्या क्या अपने सुरक्षा के लिए, कि किसी लोहा किसी के सिर पर गिर जाता है, बेचारा मर जाता है, क्या नहीं होता है दुर्घटना। तो ऐसे वातावरण में इसको उग्र कर्म कहते हैं, और ये खेत में केमिकल डालना, ये सब उग्र कर्म है, धार धूड़ सब जगह, फिर प्रदूषण, सब उग्र कर्म की वजह से है। जो हम नेचुरल लिविंग जिसको कहते हैं, नैसर्गिक जीवन से हम दूर चले जाते हैं तो उग्र कर्म करते हैं। तो ये उग्र कर्म क्यों होता है, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, ये ऐसे नास्तिकवाद भोगवाद को ग्रहण करने से ऐसे जीवन यापन हम करते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा विकार होने की वजह से हम भूल भी जाते हैं कि संसार किस लिए बना हुआ है, संसार का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये संसार प्रकृति क्या चीज है, इसको ही हम ठीक से नहीं देख पाते। लेकिन जब सत्वगुण आता है तो हम हर चीज का सौंदर्य देखते हैं, देखो ये एक वृक्ष कितना सुंदर है, एक बीज भगवान ने कैसे सुंदर बनाया है, भगवान ने हर एक प्राणी के लिए, हर एक चींटी के लिए कैसे बिल्कुल परिपूर्ण व्यवस्था बनाई है ये संसार में, कैसे मिलजुल कर सारे प्राणी 84 लोक योनि रहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते, कैसे ये संसार पूर्ण है, ये एक सृष्टि पूर्ण है, ये पृथ्वी पूर्ण है, हर एक शरीर पूर्ण है। भगवान के सृष्टि के चमत्कार को हम देखने लगते हैं। ये सब भावना, ये दृष्टि कब आती है, सत्वगुण में। जब सत्वगुण का अनुशीलन करते हैं नेचुरल लिविंग से, नैसर्गिक जीवन से, तब हम सृष्टि को समझ पाते हैं। जैसे ये सृष्टि भी प्रतिबिंब है, जिस तरह की पानी में पानी शांत होता है तब आसानी से हम प्रतिबिंब को देख सकते हैं। तो जब विकार आ जाता है, उग्र कर्म शुरू हो जाते हैं, तो सृष्टि के उद्देश्य को ही भूल जाते हैं, सृष्टि के सौंदर्य को भूल जाते हैं। एक ही शब्द आता है मन में, क्या है? भोग भोग भोग। बस कैसे भोग करना है, किस तरह से चूस चूस कर पृथ्वी के शरीर से हमें भोग निकालना है, कम से कम समय में, कम से कम परिश्रम से ज्यादा भोग। ये फॉर्मूला है आधुनिक जमाने का, है ना? लेकिन ईमानदारी से परिश्रम करके, उग्र कर्म न करते हुए, नैसर्गिक एक निसर्ग के प्रकृति के करीब आकर ऐसे कर्म करना, इसको आजकल हम भूल गए हैं। तो इसलिए ये भौतिक सृष्टि को भी सही तरह से समझ नहीं पा रहे। कितना सुंदर है ये, देखिए एक एक पन्ना, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा ना कि कैसे ये एक पत्ता जो है, ये कैसे सूरज की किरणों को ग्रहण करके कैसे कैसे उसके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, सिंचाई कैसे पानी से कैसे खींच लेता है, उसके जड़ कैसे सारा वृक्ष जाता है, एक चमत्कार है ये। ये सत्वगुण का अनुशीलन करने से ये एक चमत्कार की भावना हमारे हृदय में आती है। जब भोग होता है, भोग की भावना, तो क्या देखते हैं, वृक्ष को कैसे काटेंगे और काट कर इसको कैसे बेचेंगे, कैसे जो बेचारे आदिवासी रहते हैं उनको उनको खत्म कर देंगे, उनको दो पैसे देंगे और हम लोग एक रुपए में बेचेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, उनको गरीबी में रखेंगे, हम भोग करेंगे। यह है रजोगुण का वातावरण। लेकिन सत्वगुण में देखते नहीं, इसकी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। देखो कितना चमत्कार है, कितना सुंदर है, एक एक वृक्ष भगवान का वास्तव में चमत्कार है। अगर इसको स्टडी करने जाएंगे, अभ्यास करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी भगवान ने बनाई है इसमें, ऐसे कोई पंप देखा है आपने, जैसे वृक्ष है जिसे पानी को ऊपर खींच लेता है, एक बीज में ये पंप है, एक बीज बो दीजिए पानी में, बड़े होकर पंप बन जाएगा, और कितना ही पानी नीचे से पंप करता आएगा, इतना ऊपर, हर एक ऊपर के ऊपर जो पत्ता है उसमें पानी जाता है कि नहीं? तो देखिए वृक्ष का पंप कैसा है, नीचे से ऊपर, कोई बिजली नहीं, कुछ नहीं, कोई डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, केवल क्या सब भगवान। सत्वगुण में आकर हम चीजों को सोचते हैं और फिर देखते हैं, हाँ ये सब बनाने वाले भगवान, देखो ये चमत्कार है, तो भगवान कितने महान होंगे। लेकिन रजोगुण में ना भगवान, ना कोई सौंदर्य, केवल भोग, कैसे भोग करना है। तो इस तरह से भगवान को भी हम, भगवान के सृष्टि को नहीं समझ पाएंगे तो भगवान को कहां से समझ पाएंगे, सही बात है। तो इस तरह से विकार जितने ज्यादा आ जाते हैं रजोगुण और तमोगुण के, हम भगवान इस संसार को नहीं समझ पाते, भगवान के धाम को नहीं समझ पाते। तो मूल चीज क्या है, इच्छा, क्योंकि इच्छा के ऊपर ही सारे सृष्टि, सारा जीवन आधारित है, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे भौतिक जगत हो। लेकिन प्रतिबिंब यहां है और इसका विकृत इच्छा के वजह से यह भौतिक सृष्टि बनी हुई है, इसलिए मूल कारण है। इच्छा की वजह से हम कर्म करते हैं, कर्म करते हैं तो प्रकृति के नियंत्रण में रहकर कर्म करना पड़ता है, और जैसे कर्म करते हैं, कर्मों का फल मिलता है, वो उसको प्रारब्ध कहते हैं, तो सब ये सब तमाशा शुरू हो जाता है भौतिक संसार का। लेकिन इसका मूल क्या है, इच्छा। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या बताते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर इच्छा नहीं हो भगवान जीव की तो पत्थर बन जाएगा। मायावादी लोग कहते हैं कि इच्छा को नष्ट करना है, इच्छा को शून्य बनाओ। कोई ऐसे कहते हैं, ऐसे तुम ध्यान में बैठो कि विचारहीन हो जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हमारा उद्देश्य यह है कि ध्यान करके पत्थर बन जाए? नहीं, इच्छा तो होनी ही है, विचार तो होने ही है, केवल भगवान की सेवा में इन इच्छाओं को केंद्रित करना है, बस यही नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि इच्छा का सदुपयोग है कि हम इच्छा को भगवान की सेवा की ओर केंद्रित करें। तो ये सही इच्छा है, ये शुद्ध इच्छा है, और जो ऐसी इच्छा रखते हैं और इस इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, वो भगवान के धाम में वापस जाने के अधिकारी बन जाएंगे, सही वृक्ष को देखने के अधिकारी बन जाएंगे। नहीं तो आदमी केवल प्रतिबिंब देखता है, वो भी ठीक से नहीं देख पा रहा है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण का मिश्रण होता है। ठीक है, इस तरह से हमें भी इच्छा रखनी चाहिए कि हम भक्तों का संग करें, भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, भगवान की सेवा करें, और ऐसे हमारे जीवन को सफल बनाकर भगवान के धाम में हम चले जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? इतने भौतिक इच्छा को आध्यात्मिक इच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? संग, उन लोगों का संग करना है जिनकी आध्यात्मिक इच्छा है। संग से ही विचार बनते हैं। शराबियों का संग करेंगे तो उनकी तरह इच्छा हमारी बन जाएगी। भक्तों का संग करेंगे